नमस्कार और ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में सफर करने वाले हैं जिसका रास्ता एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली अलमारी से होकर जाता है। हम बात कर रहे हैं सीएस लुईस के कालजयी उपन्यास द लायन द विच एंड द वार्डरोब की।
एक ऐसी कहानी जो देखने में तो बच्चों की लगती है,
हाँ,
पर जब आप उसकी परतें खोलते हैं तो उसमें त्याग, विश्वासघात और मोक्ष की बहुत गहरी गूंज सुनाई देती है।
बिल्कुल। और इसके लेखक क्लाइव स्टेपल्स लुईस यानी जैक, वो कोई आम कहानीकार नहीं थे।
नहीं, वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के एक बड़े विद्वान थे
और J.R.R. टॉल्किन जैसे लेखकों के दोस्त। दिलचस्प बात यह है कि लुईस अपनी जिंदगी में एक नास्तिक थे और फिर ईसाई धर्म में वापस आए,
और वो विश्वास उनकी इस कहानी की आत्मा में बसता है।
सही, पर यह कहानी सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है, ये दूसरे विश्व युद्ध की छाया में लिखी गई थी,
जब सच में बच्चों को बमबारी से बचाने के लिए लंदन से बाहर भेजा जा रहा था।
तो कहानी की शुरुआत ही एक अनिश्चितता से होती है। चार पेवेंसी भाई बहन पीटर, सुजैन, एडमंड और लूसी
एक पुराने प्रोफेसर के घर पहुंचते हैं और वहीं से एक अनदेखी दुनिया का दरवाजा खुलता है।
तो चलिए आज उसी दरवाजे से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि नार्निया की ये जादुई दुनिया हमें अपने बारे में क्या सिखाती है।
तो ये सफर शुरू होता है सबसे छोटी बहन लूसी से। घर में खेलते खेलते वो एक पुरानी अलमारी में छिप जाती है,
लुका छिपी।
हाँ, और वो अंदर कोट के फर को महसूस करते हुए पीछे और पीछे जाती है और अचानक उसके हाथ लकड़ी की दीवार से नहीं टकराते
बल्कि पेड़ की बर्फीली टहनियों से।
बिल्कुल, और पैरों के नीचे बर्फ की चरमराहट।
ये दृश्य ही कितना जादुई है ना।
बहुत ज्यादा।
एक मामूली सी चीज, एक वार्डरोब, एक दूसरी ही दुनिया का रास्ता बन जाती है।
ऐसा लगता है जैसे लुईस कह रहे हैं कि आश्चर्य या जादू हमारी रोजमर्रा के जिंदगी में ही छिपा है,
बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। और लूसी के पास वो मासूमियत है,
लेकिन वो जिस दुनिया में पहुंचती है वो कोई सपनों की दुनिया नहीं है।
नहीं,
वहाँ एक अकेली लैंप पोस्ट की रोशनी में एक बर्फीला जंगल है। ये नार्निया है
जिस पर श्वेत डायन जैडिस का कब्जा है,
और उसने नार्निया पर एक ऐसा श्राप डाला है। एक ऐसी लाइन है किताब में, जहां हमेशा सर्दी तो रहती है पर क्रिसमस कभी नहीं आता।
ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। मतलब ये सिर्फ फिजिकल ठंड नहीं है,
नहीं,
ये एक ऐसी दुनिया है जहां उम्मीद ही जम गई है, कोई खुशी नहीं, कोई त्योहार नहीं।
और डायन का राज डर पर टिका है, जो भी उसके खिलाफ जाता है
वो उसे पत्थर का बना देती है।
और इसी डरावने माहौल में एक पुरानी भविष्यवाणी जिंदा है
कि जब आदम के दो बेटे और ईव की दो बेटियां कैर पारावेल के चार सिंहासनों पर बैठेंगे
तभी डायन का राज खत्म होगा और नार्निया के असली राजा
महान सिंह असलान वापस आएंगे।
और यहीं से ये कहानी इन चार बच्चों के कंधों पर आ जाती है।
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चारों बच्चे एक जैसे नहीं हैं।
बिल्कुल नहीं,
उनका सफर भी अलग अलग है। खासकर एडमंड का, उसका विश्वासघात ही तो इस कहानी का नैतिक केंद्र है।
एडमंड एक बहुत ही असली किरदार लगता है, वो मतलब दिल से बुरा नहीं है।
नहीं,
लेकिन वो अपने बड़े भाई पीटर से चिढ़ता है, उसे लगता है कि उसे कोई नहीं समझता,
और इसी कमजोरी का फायदा डायन उठाती है।
हाँ, जब वो नार्निया में अकेला पहुंचता है तो डायन उसे वो जादुई टर्किश डिलाइट खिलाती है।
मुझे लगता है कि वो टर्किश डिलाइट सिर्फ एक मिठाई नहीं है।
नहीं, वो एक प्रतीक है।
हाँ, उस हर चीज का प्रतीक जो पर भर का मजा तो देती है पर उसकी लत लग जाती है
और वो अंदर से खोखला कर देती है।
डायन उसे राजा बनाने का, उसे सम्मान देने का वादा करती है जो उसे घर में महसूस नहीं होता, और एडमंड
उस जाल में फंस जाता है। वो अपने भाई बहनों को धोखा देने को तैयार हो जाता है।
लेकिन यहाँ पीटर की भूमिका भी देखनी होगी। पीटर सबसे बड़ा होने के नाते जिम्मेदार तो है पर थोड़ा रौब जमाने वाला भी है।
सही कहा।
उसकी अकड़ और गुस्सा ही तो एडमंड को उससे दूर धकेलता है। शायद कहानी ये भी पूछती है कि क्या पीटर एक अच्छा भाई बने बिना एक अच्छा राजा बन सकता था।
बहुत जरूरी सवाल है। पीटर का सफर सिर्फ एक लीडर बनने का नहीं है बल्कि अपनी उस अकड़ पर काबू पाने का भी है।
और दूसरी तरफ सुजैन है
जो बहुत प्रैक्टिकल है।
हाँ, वो हर चीज में तर्क ढूंढती है। उसके लिए नार्निया जैसी जादुई दुनिया पर यकीन करना
सबसे मुश्किल है।
उसकी यात्रा दिमाग से दिल तक की है, तर्क से विश्वास तक की।
तो हमारे पास चार किरदार हैं।
लूसी जो विश्वास का प्रतीक है,
एडमंड जो प्रलोभन और पश्चाताप का,
पीटर जो नेतृत्व और जिम्मेवारी का,
और सुजैन जो तर्क और आश्चर्य के बीच संतुलन का।
और जब ये चारों एक साथ नार्निया पहुंचते हैं तब कहानी असल में रफ्तार पकड़ती है।
उन्हें मिस्टर और मिसेस बीवर मिलते हैं,
बात करने वाले।
हाँ, और वे उन्हें अस्लान और भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं। लेकिन इसी बीच
एडमंड चुपके से निकल जाता है
डायन के महल की ओर अपना वादा पूरा करने,
और अब बाकी तीनों बच्चों को भी भागना पड़ता है।
उनकी यात्रा शुरू होती है स्टोन टेबल की ओर, अस्लान से मिलने के लिए।
और ये सिर्फ एक फिजिकल यात्रा नहीं है,
नहीं, ये उनके विश्वास की परीक्षा है।
और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, एक अद्भुत बदलाव दिखता है।
सदियों से जमी बर्फ पिघलने लगती है,
चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं।
डायन का जादू टूट रहा है
क्योंकि अस्लान लौट आया है।
उन्हें रास्ते में फादर क्रिसमस भी मिलते हैं, जो उन्हें हथियार देते हैं।
पीटर को तलवार और ढाल,
सुजैन को तीर कमान, और लूसी को एक जादुई मरहम जो किसी भी घाव को भर सकता है।
ये सिर्फ तोहफे नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि अब उन्हें छिपना नहीं,
लड़ना है,
अपनी भूमिका निभानी है।
और फिर वे स्टोन टेबल पर अस्लान से मिलते हैं। अस्लान की मौजूदगी एक ही समय में राजसी और ममतामयी है।
वो एडमंड को बचा भी लेते हैं, लेकिन तभी डायन वहां पहुंचती है,
और वो प्राचीन गहरे जादू का हवाला देती है,
डीप मैजिक।
हाँ, एक ऐसा कानून जो कहता है कि हर देशद्रोही का खून उसका है, एडमंड की जान पर उसका हक है।
ये कहानी का वो मोड़ है जहां लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा।
कानून तो डायन के पक्ष में है,
यहीं पर कहानी एक अलग ही स्तर पर चली जाती है। ये डीप मैजिक असल में मतलब कर्म का नियम है,
कि विश्वासघात का एक नतीजा तो होगा ही,
न्याय की एक कीमत होती है।
लेकिन अस्लान एक दूसरा रास्ता चुनता है।
वो डायन से एक गुप्त समझौता करता है।
उस रात लूसी और सुजैन छिपकर देखती हैं कि अस्लान अकेला स्टोन टेबल की ओर जाता है। वहां डायन और उसके खूंखार अनुयायी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हैं,
उसकी सुनहरी अयाल काट देते हैं,
और फिर डायन उसे पत्थर के चाकू से मार डालती है।
ये कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला पल है।
उम्मीद का प्रतीक, नार्निया का राजा मारा गया,
बुराई जीत गई, कम से कम उस पल तो ऐसा ही लगता है।
लूसी और सुजैन रोते हुए रात भर उसके शरीर के पास बैठी रहती हैं।
लेकिन जैसे ही सूरज उगता है, एक जोर की गड़गड़ाहट होती है।
स्टोन टेबल दो टुकड़ों में टूट जाती है, और अस्लान पहले से भी ज्यादा भव्य और तेजस्वी रूप में जीवित होता है।
और वो उन्हें उस रहस्य के बारे में बताता है जिसे डायन नहीं जानती थी, एक और भी गहरा जादू,
डीपर मैजिक फ्रॉम बिफोर द डॉन ऑफ टाइम।
हाँ, वो कहता है कि जब कोई निर्दोष, जिसने कोई धोखा ना दिया हो, एक धोखेबाज के बदले अपनी जान स्वेच्छा से देता है,
तो मृत्यु का नियम उलट जाता है।
ये साफ तौर पर ईसाई धर्म में यीशु के बलिदान और पुनरुत्थान का एक रूपक है।
हाँ, और लुईस ने एक बार कहा था कि उनका मकसद किसी धर्म का प्रचार करना नहीं था, बल्कि उस कहानी के भावनात्मक सच को एक नई काल्पनिक दुनिया में फिर से महसूस कराना था,
ताकि हम उस त्याग के वजन को, उस प्रेम की शक्ति को एक ताजगी भरी नजर से देख सकें।
ये न्याय से ऊपर दया और सजा से ऊपर मोक्ष की कहानी बन जाती है।
और इस पुनरुत्थान के बाद तो जीत तय है।
अस्लान अपनी सांस से डायन के महल में पत्थर बने सभी प्राणियों को वापस जिंदा करता है,
और फिर अपनी सेना के साथ ठीक उस वक्त युद्ध के मैदान में पहुंचता है जब पीटर की सेना हारने वाली होती है।
अस्लान खुद डायन को मारता है और बुराई की हार होती है।
भविष्यवाणी पूरी होती है, चारों बच्चों को केयर पैरावेल में राजा और रानियों का ताज पहनाया जाता है।
वे सालों तक राज करते हैं, जिसे नार्निया का स्वर्ण युग कहा जाता है।
वो बच्चे से बड़े होकर समझदार और न्यायप्रिय शासक बन जाते हैं।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
नहीं,
एक दिन शिकार करते हुए वे वापस उसी लैम्पोस्ट से होते हुए
अलमारी के जरिए अपनी दुनिया में लौट आते हैं।
वे फिर से बच्चे हैं, और उनकी दुनिया में एक मिनट भी नहीं बीता है।
यह भी कितना गहरा विचार है। जैसा कि कहा गया है, एक बार नार्निया का राजा या रानी, हमेशा नार्निया का राजा या रानी। इसका मतलब ये है कि वो अनुभव उन्हें हमेशा के लिए बदल चुका है।
वो अपने साथ वो हिम्मत, वो समझदारी, वो चरित्र लेकर लौटे हैं जो अब उनसे कोई नहीं छीन सकता।
तो ये कहानी सिर्फ अच्छाई बुराई की लड़ाई नहीं है।
नहीं, ये बड़े होने की कहानी है। ये साधारण बच्चे असाधारण परिस्थितियों में अपने फैसलों से, अपनी गलतियों से सीखते हुए नायक बनते हैं।
अंत में यह कहानी शायद हमें यही सिखाती है कि हमारी जिंदगी की सबसे लंबी और ठंडी सर्दियों में भी उम्मीद की वापसी और वसंत का आना मुमकिन है।
और ये भी कि महान रोमांच और आश्चर्य के दरवाजे वहां भी मिल सकते हैं जहां हम कम से कम उम्मीद करते हैं, शायद किसी पुरानी साधारण से दिखने वाली अलमारी के भीतर।
यह संवाद यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।